ग्यारहवां अध्याय, चंपा पर भारत का सांस्कृतिक प्रभाव। पहला, शासन व्यवस्था। कंबोडिया के समान दक्षिणी वियतनाम से भी संस्कृत के बहुत से अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक है। इनकी अनुशीलन से चंपा की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उस पर भारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कंबोज के समान चंपा में भी शासन कार्य के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। वेद शास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन होता था। शिव और विष्णु आदि पौराणिक देवी देवताओं तथा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थी और वर्णाश्रम को सामाजिक संगठन का आधार माना जाता था। कंबोज देश की संस्कृति पर विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। चंपा कंबोज का पड़ोसी राज था और सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें अधिक भेद नहीं था, अतः चंपा के सांस्कृतिक जीवन पर अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। राजा, कंबोज के समान चंपा में भी राजतंत्र शासन की सत्ता थी। राजा को देवताओं के अंश से निर्मित माना जाता था और उसकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई ऐसी सभा या संस्था नहीं थी जिसे जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता हो। 766 ईस्वी में उत्कीर्ण यंग तिकुल अभिलेख में राजा इंद्रवर्मा के लिए ब्रह्मांश प्रभव विशेषण का प्रयोग किया गया है। वहां लिखा है, ब्रह्मांश प्रभव प्रभुत्व विभवो भाग्य प्रभावन्वित शक्तया विष्णु रीव प्रमथ्य च रिपूर्ण धर्मास्थितम पाल एत। जिस राजा को दैवी माना जाता हो उसकी शक्ति का अनियंत्रित होना सर्वथा स्वाभाविक है, पर राजा के लिए वीर तथा प्रजा का पालक होना आवश्यक माना जाता था। एक तंत्र शासन तभी सफल हो सकते हैं जब राजा योग्य तथा गुणी हो। चंपा में भी राजा से यह आशा की जाती थी कि वह प्रजा का पुत्रवत पालन करे। राजा प्रकाश धर्मा के भद्रेश्वर महादेव के दान पत्र में राजा कंदर्प धर्मा के संबंध में यह कहा गया है कि व्यसनों से विरहित वह राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, वह साक्षात धर्म के समान था। श्रीमान कंदर्प धर्मेति साक्षा धर्म इवापर प्रजा यशस्सैवे धर्म व्यसन रहित पति सुतवत। राज्य में संपूर्ण जनता जब समृद्धि के मार्ग पर अग्रसित हो, सर्व प्रजानाम समुदेति यत्र मनोरथो विश्व सृजीव संगर्ग, तभी राजा को सफल माना जाता था। राजा से आशा की जाती थी कि वह जनता के हित के लिए ही आत्मतेज का प्रयोग करे। प्रकृति हित मधिपशन संत यो न तमेत जो, राजा के लिए इंद्रियजयी होना तथा काम क्रोध लोभ मोह मद एवं हर्ष के वशीभूत न होने वाला होना आवश्यक समझा जाता था। संभवतः कंबोज के समान चंपा में भी राजा को परामर्श देने के लिए सभा की सत्ता थी। वोचन के अभिलेख में आज्ञा पीतम सदिसी राजवरेण आया है, जिससे सभा की सत्ता की संकेत मिलती है। राजा के पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए या किसे राजा बनाया जाए, इस संबंध में भी राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का हाथ रहता था। 1081 ईस्वी में राजा हरिवर्मदेव चतुर्थ के स्वेच्छापूर्वक राज सिंहासन का परित्याग कर देने पर, जब उसका पुत्र श्री राजद्वार इंद्रवर्मदेव के नाम से राजा बना, तब उसकी आयु केवल 9 वर्ष की थी। वह शासन सूत्र का संचालन कर सकने के अयोग्य था। माइसोन के एक अभिलेख के अनुसार इस दशा के में राज्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंडित, ज्योतिषी और आचार्य एकत्र हुए और उन्होंने विचार विमर्श के अनंतर यह पाया कि श्री राजद्वार के चाचा श्री युवराज महासेनापति कुमार पांग्य में राजा होने के सब आवश्यक गुण हैं और उन्होंने इस कुमार को राजा के पद पर अधिष्ठित किया। अन्य भी अनेक अवसरों पर राज्य के प्रमुख व्यक्तियों ने राजा के वर्ण में हाथ बटाया था। इसके संकेत चंपा के अभिलेखों में विद्यमान है। 3 प्रांत शासन के प्रयोजन से चंपा का राज्य 3 प्रांतों में विभक्त था। ये प्रांत निम्नलिखित थे। पहला, अमरावती। यह राज्य का उत्तरी प्रांत था। वर्तमान समय का क्वांग नाम प्रदेश इसी को सूचित करता है। अमरावती प्रांत में 2 मुख्य नगर थे, चंपापुर और इंद्रपुर, ये दोनों विभिन्न समयों में चंपा की राजधानी भी रहे। जहां आजकल दोंग दुओंग है, वहीं प्राचीन समय में इंद्रपुर की सत्ता थी। दूसरा, विजय, यह चंपा राज्य का मध्यवर्ती प्रांत था। वर्तमान समय में इसे बिन्ह दिन्ह कहते हैं। इसके मुख्य नगर का नाम भी विजय था और यह नगर भी चंपा की राजधानी रहा था। तीसरा, पांडुरंग, यह चंपा का दक्षिणी प्रांत था और इसका मुख्य नगर वीरपुर था। वीरपुर को राजपुर भी कहते हैं। यह नगर भी कुछ समय के लिए चंपा की राजधानी रहा था। कोठार, वर्तमान खंडहुआ का प्रदेश भी पांडुरंग प्रांत के अंतर्गत था, पर ऐसे अवसर भी आए जबकि कोठार के प्रदेश में चंपा राज्य के एक पृथक प्रांत की स्थिति प्राप्त कर ली थी। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों या विषयों में विभक्त था। चीनी ग्रंथों के अनुसार राजा हरिवर्मा तृतीय के समय 1080 ईस्वी में चंपा के इन जिलों की कुल संख्या 38 थी। प्रत्येक जिले में कुछ नगर और बहुत से गांव होते थे। प्रांतों के शासन के लिए राजा द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनमें शासक और सेनापति प्रधान थे। प्रायः राजकुल के ही किसी व्यक्ति को प्रांत के शासन के लिए भेजा जाता था। पो नगर के एक अभिलेख के अनुसार राजा हरिवर्म देव ने अपने पुत्र विक्रांत वर्मा को पांडुरंग का शासक या पुराधिपति नियुक्त किया था और उसके साथ एक सेनापति की भी नियुक्ति की थी। क्योंकि प्रांतों के शासक प्रायः राजकुल के व्यक्ति होते थे और अपने क्षेत्र में उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के सदृश रहती थी, अतः कभी कभी वे राजा के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र हो जाने का भी प्रयत्न किया करते थे। ऐसे ही एक विद्रोह को शांत करने के लिए राजा जय परमेश्वर वर्मा ने अपने भांजे श्री देवराज महासेनापति को पांडुरंग भेजा था 1050 ईस्वी में। प्रांतों के अंतर्गत जिलों या विषयों पर भी वंश क्रमानुगत सामंत राजाओं का शासन होता था। संभवतः चंपा राज्य में एक प्रकार की सामंत पद्धति का विकास हो गया था और वहां के सामंत राजा अवसर पाते ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाने के लिए कटिबद्ध रहा करते थे। विशेषतया पांडुरंग एक ऐसा प्रांत था जहां के निवासियों में अपने प्रदेश के पृथकत्व की भावना बहुत प्रबल थी। प्रांतों के शासन के लिए जो बहुत से राज कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, चीनी ग्रंथों के अनुसार उसकी संख्या 50 के लगभग रहती थी। इसका एक मुख्य कार्य राजकीय करों को वसूल करना होता था। वेतन के बजाय इन्हें जागीरें देने की भी प्रथा थी, जिसकी आमदनी से वे अपना खर्च चलाया करते थे। वेतन के बदले में जागीरें प्राप्त कर राज कर्मचारियों की स्थिति अपनी जागीर के स्वामी की हो जाती थी और वे स्वतंत्र आचरण करने लगते थे। चंपा में बहुधा गृह कलह तथा अव्यवस्था का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। राजकीय आय, राजकीय आमदनी का प्रधान साधन भूमि कर था। उपज का सड़ भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। कर की यह पद्धति पूर्णतया भारतीय परंपरा के अनुकूल थी। विशेष दशाओं में भूमि कर की दर घटाकर 10% भी कर दी जाती थी, पर यह रियायती दर राजा के अनुग्रह पर निर्भर थी। जो दिंक अभिलेख में राजा भद्रवर्मा द्वारा भद्रेश्वर महादेव के मंदिर के लिए एक भूमि खंड के भूमि कर को अक्षय नेवी के रूप में दिए जाने का उल्लेख है और उसके भूमि कर की रियायती 10% दर की भी बातें कही गई है। जनपद मर्याद षड भागेपि स्वामिना दश भागेन अनुगृहिता देवस्य देयेति। यद्यपि जनपद की मर्यादा के अनुसार उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में गाय था, पर स्वामी राजा ने अनुग्रह करके उपज का 10वां भाग प्रदेय निर्धारित कर दिया था। जो भूमि किसी मंदिर की संपत्ति होती थी, उस पर प्रायः भूमि कर नहीं लगाता था। चंपा के अनेक अभिलेखों में मंदिरों की भूमि संपत्ति पर भूमि कर की छूट का उल्लेख है। दोंग दुओंग अभिलेख के अनुसार राजा श्री जय सिंह वर्मदेव ने श्री इंद्रा परमेश्वर आदि के अनेक मंदिरों का भूमि कर समाप्त कर दिया था। राजकीय आमदनी के अन्य साधन वे कर थे जो निष्काम्य निर्यात और प्रवेश आयात पणे पर लगाए गए थे या जो कल कारखानों की पैदावार पर लगाए जाते थे। इन करों की दर प्रायः 20% होती थी। न्याय व्यवस्था। चंपा के अभिलेखों से सूचित होता है कि कानून प्रधानतया मनु, नारद तथा भार्गव की स्मृतियों या धर्म शास्त्रों पर आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा जय इंद्र वर्मदेव मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाला था और वह सब धर्म शास्त्रों, विशेषतया नारदीय तथा भार्गवीय धर्म शास्त्रों में निष्णात था, पर न्याय करते हुए केवल स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कानून को ही दृष्टि में नहीं रखा जाता था, अपितु लोक धर्म, जनता में प्रचलित प्रथाओं पर आधारित कानून के अनुसार भी न्याय किया जाता था। इसीलिए 889 ईस्वी में उत्कीर्ण बोनंग के अभिलेख में राजा इंद्रवर्मा द्वितीय को शास्त्रज्ञ के साथ साथ लोक धर्मविद भी कहा गया है। चीन के प्राचीन ग्रंथों से भी चंपा राज की न्याय व्यवस्था के संबंध से कुछ बातें ज्ञात होती हैं। अनेक जघन्य अपराधियों के लिए बेंत या कोड़े मारने का दंड था। इसके लिए अपराधी को जमीन पर लिटा दिया जाता था। दो आदमी उसकी दाई ओर खड़े होते थे और दो आदमी बाई ओर। ये क्रमशः उस पर बेंत व कोड़ों से चोट करते थे, जिनकी संख्या 50, 60 या 100 तक हुआ करती थी। चोरी या डकैती के अपराध में प्रायः उंगलियां या हाथ काट डालने का दंड दिया जाता था। अत्यधिक जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु की भी व्यवस्था थी। मृत्युदंड के अनेक ढंग थे। अपराधी को वृक्ष से बांधकर भाले से उसकी गर्दन पर प्रहार किया जाता था और फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। हत्या के अपराध में अपराधी को या तो हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाता था और या उसे मृत व्यक्तियों के कुटुंबियों के सुपुर्द कर देते थे, जो उसे अपने ढंग से मार सकते थे। कतिपय अपराधों के लिए धन संपत्ति को जब्त कर लेने और देश निकाले का भी विद्यमान था। कर्ज की मात्रा को अदा न करने पर मरण को दास बनने का दंड दिया जाता था। अपराध का पता लगाने के लिए दैवी परीक्षा का भी सहारा लिया जाता था। शेर आदि हिंसक पशु के सामने ले जाने पर यदि अपराधी को पशु कुछ न कहे तो उसे निरपराध मान लिया जाता था। राजद्रोही से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उसे किसी निर्जन स्थान पर वृक्ष आदि से बांध देने की प्रथा थी और उसे तब तक बांधे रखा जाता था जब तक वह अपना अपराध स्वीकार न कर ले। सेना। चंपा में सेना का बहुत महत्व था और उसके राजाओं को अनाम और कंबुज से निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता था और इसीलिए उन्होंने सैन्य शक्ति की वृद्धि तथा सेना के संगठन पर बहुत ध्यान दिया। सेना दो प्रकार की थी, स्थल सेना और जल सेना। स्थल सेना के 3 विभाग थे, पदाति सेना, अश्वारोही सेना और हस्ती सेना। भारत में सेना के 4 अंग हुआ करते थे और इसीलिए उसे चतुरंग बल कहा जाता था। सेना का 4वां भाग रथ सेना का होता था, पर चंपा में संभवतः रथ सेना नहीं थी। सैनिक लोग भालों, बर्छों, धनुष बाण, ढाल, तलवार आदि का युद्ध में प्रयोग किया करते थे। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में चीन के एक सैनिक ने चंपा के अश्वारोहियों को घोड़े पर बैठे हुए बाण चलाने की शिक्षा दी थी। धनुष बाण चलाने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता था। घोड़े पर बैठे हुए दोनों हाथों से काम लेना सुगम नहीं होता, पर कंबुजराज धरणेन्द्र वर्मा द्वितीय के विरुद्ध चंपा के राजा जय इंद्र वर्मा ने जब अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया तो उसमें ऐसे अश्वारोही सैनिक भी थे जो घोड़े पर चढ़े हुए तीर कमान चला सकते थे। इसका प्रशिक्षण उन्होंने चीन के एक सैनिक से ही प्राप्त किया था। चंपा की स्थल सेना में हाथियों का प्रधान स्थान था। मौर्य युग के प्रारंभ के समान चंपा की सेना में भी हस्ती बल को प्रधानता दी जाती थी। 14वीं सदी में ओदोरिक द पोर्दनोन नामक यात्री चंपा गया था। उसने लिखा है, राज शासन प्रणेताओं की दृष्टि में वही राजा सफल राजा माना जाता था जो कृत वर्णाश्रम स्थिति हो। यदि आदर्श चंपा के राजाओं के सम्मुख भी रहता था, यह इस अभिलेख द्वारा स्पष्ट है। चंपा के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रमुख स्थान था। ब्राह्मण की हत्या को घोर पाप माना जाता था। 657 ईस्वी के माइसोन अभिलेख में राजा द्वारा प्रतिष्ठापित भगवान ईशानेश्वर श्री शंभु भद्रेश्वर की मूर्तियों की निरंतर पूजा की व्यवस्था के उल्लेख के पश्चात यह कहा गया है कि जो कोई इन्हें किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाएगा उसे ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा और जो कोई उनकी भली भांति रक्षा करेगा उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ब्रह्म हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है और अश्वेध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। ये ध्वंसर्यांत ते ब्राह्म हत्या फल मनंत कल्पे सर्व स्त्र जमुनु भवन्ति ये परिपालयन्ति तेष्व मेघ फलम ब्रह्म हत्याश्वमेधोधाभ्याम न परम पुण्य पापयो रित्यागमादिति प्रतिज्ञाताम। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को समाज में अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना अक्षम्य अपराध था। पर राजसत्ता के उस युग में जबकि राजा को ब्रह्मांत प्रभाव माना जाता हो यदि ब्राह्मण की तुलना में राजा की स्थिति ऊंची समझी जाए तो यह अस्वाभाविक नहीं है। इसीलिए एक अभिलेख में अन्य राजाओं और क्षत्रियों के साथ साथ ब्राह्मणों और पुरोहितों द्वारा भी राजा के चरणों को स्पर्श करने का उल्लेख है। ब्राह्मण पुरोहिता ग्रसान क्षत्रानयन परित वृंद जस्टु चरणान विंद। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि समाज में ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रियों का स्थान अधिक ऊंचा था। वस्तुतः ये दोनों ही वर्ण समाज में उच्च स्थान रखते थे और चंपा का समाज ब्रह्मछत्र प्रधान था। ब्रह्मछत्र प्रधानों जगति देवी तथा यज्ञ भाग्रमय हेन्द्र। कंबुज देश के समान चंपा में भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विवाह संबंध प्रचलित था। 657 ईस्वी के माइसोन अभिलेख में चंपा के राजाओं की जो वंशावली दी गई है उसके अनुसार राजा रुद्रवर्मा का पिता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था और उसकी माता क्षत्रिय मनोरथ वर्मा की दौहित्री थी। तस्य कृतिय श्यो श्री मनोरथ वर्मण दौहित्री तनयो यो भूत द्विजात्म परवात्मज। इसी प्रकार राजा प्रकाश धर्मा जो क्षत्रिय था की सगी बहिन का विवाह सत्य कौशिक स्वामी नामक ब्राह्मण के साथ हुआ था। अभिलेख में इस विवाह की उपमा अनुसूया और अत्रि मुनि के विवाह से दी गई। सत्य कौशिक स्वामी का पुत्र भद्र स्वामी था। अभिलेख के अनुसार भद्र वर्मा ने क्षत्रकुल और ब्रह्मकुल दोनों को प्रकाशमान किया था। इस संबंध में अभिलेख के 3 श्लोक उत्तरण के योग्य हैं। प्रभास धर्म निरपते सस्योदर्या यस्य अनुजा समभूत जगताम हितार्थ जननी विश्वसृज कर्म सिद्धिरिव जन्माच दंस सत्य कौशिक स्वामी तस्या पतित्वमागदनासुयाया इवात्री मुनि। पत्यम कील यो वहुआ प्रख्यात वीर्यसु तिरुप कांति छत्रम कुलम ब्रह्मत्तदयम ही निरंतर यह प्रकटी चकार। चंपा के राजा पड़ोस के भारतीय राज्यों से भी विवाह संबंध किया करते थे। सत्य कौशिक स्वामी के पौत्र जगधर्म का विवाह शर्वाणी के साथ हुआ था जो कंबुज राज ईशान वर्मा की पुत्री थी। यह शर्वाणी सोम वंश में उत्पन्न हुई थी। तस्याम श्री सर्वाण्याम सत्याम सोमान्वय प्रसुताम वर विक्रमम प्रियसुतम यमजन यच्छी जगधर्म। कार्य के अनुसार ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति भी पुरोहित अग्रास जिन्हें प्रमुख आसन प्रदान किया जाए पंडित और तापस सदृश वर्गों के होते थे। 801 ईस्वी में उत्कीर्ण गलय लमोव अभिलेख में पुरोहित आदि के गुणों का उल्लेख है। सर्वाणि मानि वचनानि पुरोहिताग्रास ब्राह्मण पंडितात् पासगाणानाम यदा श्री परमोहि पुरोहितैन युहे माने। जिससे यह संकेत मिलता है कि पुरोहितों अग्रासों पंडितों और तापसों के गणों या संगठनों की भी चंपा में सत्ता थी जिन्हें महापुरोहितों द्वारा संबोधित किया जाता था। राजवंशों में उत्तराधिकार केवल पिता पुत्र कर्म के अनुसार ही नहीं चलता था अपितु अनेक बार राजा का भांजा उसका उत्तराधिकारी होता था। ऐसे अनेक उदाहरण अभिलेखों से ज्ञात होते हैं। पृथ्वीरेंद्र वर्मा के पश्चात उसके भांजे सत्य वर्मा और इंद्र वर्मा क्रमशः चंपा के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। इसी प्रकार इंद्र वर्मा के बाद पहले उसका बहनोई और फिर भांजा राजा बने। अनेक विद्वानों ने इससे यह परिणाम निकाला है कि दक्षिणी भारत के कतिपय राजवंशों के समान चंपा के राजवंश में भी मातृसत्ता प्रथा की सत्ता थी। पर ये उदाहरण अपवाद रूप में भी हो सकते हैं। जबकि किसी राजा के पुत्र न होने की दशा में उसके दौहित्र अथवा भांजे ने राज को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। रहन सहन तथा वेशभूषा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा चंपा के निवासियों के संभ्रांत व उच्च वर्ग का निर्माण होता था। एक अभिलेख से इस वर्ग के व्यक्तियों की वेशभूषा तथा रहन सहन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजा भद्र वर्मा का एक उच्च पदाधिकारी आज्ञा महासामंत था। वह शीर्ष पर माला धारण करता था। माला शीर्षो मस्तक पर उत्तम तिलक लगाता था। उत्तम श्री वर तिलक रुचि। उसके कान पूरे पूरे आभूषणों से ढके रहते थे। कर्णभूषा समस्ता श्रेष्ठ कर्णावतंसो। उसकी कमर में सोने की कांची पड़ी होती थी। रुक्मांग कांची सुनहरी मियान में उसने तलवार रखी होती थी। सतखड़गी रुक्मो को शुपी मोर के पंखों से बना छत्र वह धारण करता था। मयूराज छंत्रम और उसके शरीर पर दो वस्त्र होते थे युगल वसनम। वह ऐसी पालकी में बैठकर चलता था जिसके डंडे चांदी के बने होते थे दोलिका रुपये दंडा। जब वह कहीं आता जाता था तो सैनिक तथा बाजी बजाने वाले उसके साथ साथ चला करते थे। वाधे समह बलय रस्याश्च वर्तारयति। अभिलेख के इस विवरण से चंपा के संभ्रांत राज पदाधिकारियों की वेशभूषा तथा रहन सहन का स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तांबे व पीतल सदृश धातुओं के तो बर्तन बनते ही थे, साथ ही सोने और चांदी को भी बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 1050 ईस्वी के पोनगर अभिलेख में राजा परमेश्वर वर्मा द्वितीय द्वारा चांदी के लोटे रूपमय भिंगार को पूजा के लिए काम में लाने के प्रयोजन से मंदिर को दान में दिए जाने का उल्लेख है। इसी अभिलेख में एक बहुत बड़े बर्तन पृथुभाजन का भी मंदिर को दिया जाना लिखा गया है। सोने चांदी के बर्तनों पर नक्काशी का काम भी किया जाता था। रुप्यम रजत भाजनम त्रयमिदम श्री रंजितम चांतरे। धूप जलाने तथा पान रखने के प्रयोगों में आने वाले सुवर्ण पात्रों का भी उल्लेख अभिलेखों में है। इसमें संदेह नहीं कि बर्तन बनाने का शिल्प चंपा में भी बहुत उन्नत था। इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र बनाने नौकाएं व जहाज बनाने और हाथी दांत का काम करने में भी बहुत शिल्पी व्यापृत रहा करते थे। भवन निर्माण का शिल्प भी चंपा में बहुत उन्नत था। मंदिरों और राजप्रसादों के अतिरिक्त वहाँ कोष्ठागार भी बड़ी संख्या में बनाए जाते थे जिनमें अन्न जमा करके रखा जाता था। चंपा के अभिलेखों में राजकीय कोष के बहुधा कोष्ठागारों का भी उल्लेख किया गया है।